ज्ञान तैयार हो चुका था। वो तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि वो देख रहा था न्यारा उसके सामने काफी असहज महसूस कर रही थी, इसीलिए वो कमरे से बाहर चली गई थी। न्यारा अभी तक तैयार नहीं हुई थी, वो सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि सभी लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। हॉल में सोफे पर बैठे सभी लोग गप्पे लगा रहे थे, अजय कपूर, सुनीता कपूर, नरेश बेदी, दादाजी और मंजू सभी बैठे हुए थे। निया अभी तक उठी नहीं थी, वो सो रही थी। न्यारा को अभी तैयार होना था। जैसे ही वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली, मंजू की नज़र उस पर पड़ी, मंजू जो सुनीता के साथ वहां बैठी थी। मंजू ने सिर पर हाथ मारा और गुस्से में बोली, लड़की तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी विदाई है, तो क्या अब तुम जीन्स और टी शर्ट पहनकर विदाई करोगी? न्यारा ने इधर उधर देखा, उसकी माँ सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर रही थी। मंजू ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपनी साड़ी दे देती हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में भी तो एक दो साड़ियाँ थी, अगर आज शाम तक तुम रुकी रहती तो मैं शॉपिंग करवा देती और साड़ियाँ लेकर देती, ऐसे ससुराल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। न्यारा ने धीरे से सिर हिलाया। मंजू ने पहले ही कहा था, लेकिन न्यारा और ज्ञान ने मना कर दिया था, क्योंकि हमें अभी जाना है। ज्ञान वहां बैठा हुआ मुस्कुराया और बोला, अच्छी लग रही हो। ज्ञान की बात सुनकर न्यारा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अपने घर पर जो पहनना चाहते हो पहन लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज जो तुम्हारी माँ कहती है वो पहन लो। उसकी माँ अंदर गई। इसी वक्त दरवाजे पर बेल बजा। न्यारा का भाई नकुल दरवाजा खोलने आया। सामने खड़ा श्याम खन्ना था, जिसकी हम सब वेट कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ही उसकी ज्ञान कपूर से बात हुई थी। ज्ञान कपूर ने कहा कि निया के पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं, जबकि अभी तक उसने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। श्याम खन्ना कल से ही पूछ रहा था कि वो उनके पेरेंट्स तक कैसे पहुंचा, क्या न्यारा की वजह से उनसे बात हुई, मगर वो चुप था। आओ बेटा आओ, नरेश जी खुद उठकर खुद शाम को लेने चले गए। श्याम खन्ना अंदर लिविंग रूम में पहुंचा। सभी लोग वहां बैठे हुए थे, ज्ञान कपूर, उनके मॉम और डैड और बाकी परिवार वाले, लेकिन ज्ञान को छोड़कर सब लोग न्यारा का इंतजार कर रहे थे। श्याम खन्ना ने सभी को देखा और समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग एक साथ कैसे बैठे हैं। तभी दादाजी ने सीधे बात शुरू की, तुम्हें निया पसंद है? श्याम ने धीरे से ज्ञान कपूर की तरफ देखा। ज्ञान मुस्कुरा रहा था। दादाजी ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम निया से शादी करना चाहते हो या नहीं, जैसे ही टाइम पास कर रहे हो? श्याम ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं उसे पसंद करता हूँ। शादी करोगे? दादाजी ने पूछा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे क्लियर करनी है, श्याम की जगह ज्ञान कपूर ने कहा। दादाजी, ये निया को बहुत खुश रखेंगे, बहुत अच्छा कमाता है और बहुत अच्छा वकील भी है, ज्ञान कपूर मुस्कुराकर कहने लगा। इस बीच मंजू कमरे से बाहर आई और न्यारा, जिसने साड़ी पहनी हुई थी और गहने पहने हुए थे, मांग में सिंदूर था। जैसे ही श्याम खन्ना की नज़र न्यारा पर गई, वो हैरान रह गया। वो सोच रहा था न्यारा की शादी कब हुई। अब उसे बेचारे को क्या पता कि ज्ञान खन्ना और न्यारा वेदी दोनों की शादी हो चुकी है, एकदम एक झटके के साथ। अगर तुम सचमुच निया से शादी करना चाहते हो तो अपने मॉम डैड को हमारे घर भेजो, दादाजी ने गंभीरता से कहा। नरेश बेदी ने भी कहा, सही बात है, तुम्हारे मॉम डैड से बात तो करनी ही होगी ना? हाँ बिल्कुल, ज्ञान ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। श्याम खन्ना ने सिर हिलाया, उनकी तरफ से मुझे पूरी इजाज़त है, मैं जिसे चाहूँ अपना जीवन साथी चुन सकता हूँ, अजय कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। सही बात है, मैं उनके डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, अजय कपूर ने तारीफ करते हुए कहा। मेरे बेटे जैसा है, जैसा मैं ज्ञान कपूर के लिए सोचता हूँ, वैसे ही न्यारा के लिए ज्ञान सही है, और निया के लिए भी श्याम बहुत अच्छा रहेगा। श्याम के पल्ले इस पूरे मसले में कुछ भी नहीं पड़ा था। मंजू चाय के लिए उठ चुकी थी और थोड़ी ही देर में सभी चाय पीने लगे। इस बीच श्याम को थोड़ा फ्री टाइम मिला और उसने ज्ञान को मैसेज किया। मैसेज में लिखा था, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने शादी कर ली न्यारा से। ज्ञान हैरान रह गया, उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया, न समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तभी निया उठकर बाहर आई। तो फिर ठीक है, दादाजी ने कहा, अपने माता पिता से बात करो अगर न्यारा से शादी करनी है। श्याम खन्ना ने गंभीरता से कहा, मैं अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करवा सकता हूँ, वो निया की तरफ देख रहा था। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मगर तुम्हें ये भी बता देना कि मैं तलाकशुदा हूँ। निया ने कहा, असल में यही वजह थी कि वो शाम का प्रपोजल स्वीकार नहीं कर रही थी, उसका डर था कि निया के तलाकशुदा होने की वजह से ही रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। फैजान अभी तक नहीं आया, उसे इकबाल भाई साहब को छोड़ना जाना था, रिहाना बेगम ने कहा। अरमान उन्हें छोड़ाएगा, सादिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं चला जाता हूँ, अरमान बोला, मैं फ्री हूँ अभी। ठीक है, तुम चले जाओ, रिहाना बेगम ने कहा। इकबाल ने कहा, हम टैक्सी से चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना, अरमान ने कहा। वो उन्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन फैजान कहीं गया ही नहीं था, वो घर में ही था। बस सादिया ने जानबूझकर ऐसा प्लान बनाया था, क्योंकि अरमान ने उससे कहा था कि वो उन्हें छोड़ना चाहता है। सादिया समझ गई थी कि अरमान को नूर में दिलचस्पी है और उसने फैजान को भी इसके बारे में बताया। जब सभी गेट पर खड़े थे, जाने के लिए तैयार थे, फैजान अरमान के घर से लॉन में उनके पीछे आ गया। सादिया अंदर आई तो फैजान भी उसके पीछे आ गया। सादिया, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कहीं नहीं गया, तो तुमने झूठ क्यों बोला, फैजान ने कड़ा सवाल किया। तुम क्या उनके नौकर हो जो उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं हो और छोड़ने चले जाओ? सादिया ने जवाब दिया, ये माहिरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम अरमान और नूर को करीब लाने की कोशिश कर रही हो, फैजान ने कहा। सादिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माहिरा की बातें मुझे भी पसंद नहीं आई। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए नूर का इस्तेमाल किया, अब मैं वही करने वाली हूँ। और तुम्हारी बीवी, मैं तो जरा सा मुंह नहीं लगती, फिर भी तुम हर वक्त उसी की फिक्र में लगे रहते हो, सादिया ने फैजान को टोक दिया। फैजान ने चुपचाप कहा, और तुम्हारा शौहर, वो तुमसे कितना नाराज है? वो नाराज है, तुम उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं, फैजान ने समझाया। वो जानता था कि नूर के मामले में रेहान सादिया पर गुस्सा था और ये गुस्सा और बढ़ सकता था। फरीद ने कहा, मदर रेहान माहिरा के जैसे नहीं है, वो मुंह फेर भी लें उससे भी हो जाएंगे, तो किसी और पर नजर नहीं डालेंगे। इसका मतलब था कि माहिरा को रेहान पसंद था, इसीलिए वो रेहान में इंटरेस्टेड थी। सादिया को भरोसा था कि रेहान सिर्फ नूर को चाहता है, किसी और को नहीं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, फैजान ने अंदर ही अंदर सोचा और वहीं खड़ा रह गया। सादिया अपने कमरे में चली गई। फैजान बेवकूफ नहीं था, वो बहुत कुछ देख रहा था जो आगे चलकर होने वाला था। इकबाल के जाते ही रेहान वापस साइड पर चला गया। असल में उसे एक काम था और वो बहुत देर से आया। सुबह ब्रेकफास्ट पर फरीद पूछ रहा था, सादिया रेहान रात कब आया? मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता, सादिया ने जवाब दिया। 3 बजे आया था, रेहाना बेगम ने बीच में बता दिया, तभी रेहान वहां पहुंच गया। तुम्हारा काम इतना क्यों बढ़ गया? पहले तो तुम इतना देर नहीं लेट होते थे, फरीद खान ने पूछा। आपको पता है ना, अरमान पहले मेरे साथ काम करता था, आजकल वो अपने काम में उलझा हुआ है, रेहान ने बताया। रेहाना बेगम ने कहा, तो कोई उसे असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेता? तुम्हारा काम काम हो जाएगा, रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल काम करने के लिए वफादार लोग मुश्किल से मिलते हैं, रेहान ने गंभीरता से कहा।
सादिया ने कॉफी का कप रेहान के आगे रखा। चाय ले आना, उसने किचन की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन रेहान अभी भी सादिया से नाराजगी महसूस कर रहा था।